ಯತ್ಕೃತಾರ್ಥಮಹಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದ ಮಾಧವಂ ಶ್ರೀಮನ್ಮದನ ಗೋಪಾಲಂ ಬೃಂದಾರಣ್ಯ ಪುರಂದರಂ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇಹಂ ದೀನಾನುಗ್ರಹಕಾರಕಂ ವಂದೇ ಮುಕುಂದಮರವಿಂದದಲಾಯತಾಕ್ಷಂ ಕುಂದೇಂದುಶಂಖದಶನಂ ಶಿಶುಗೋಪವೇಶಂ ಇಂದ್ರಾದಿದೇವಗಣವಂದಿತಪಾದಪೀಠಂ ವೃಂದಾವನಾಲಯಮಹಂ ವಸುದೇವಸೋನಂ ನವಜಲಧರವರಣಂ ಚಂದ್ರಕೋದ್ಭಾಸಿಕರಣಂ ವಿಕಸಿತನಲಿನಾಶಯಂ ವಿಸ್ಫುರನ್ಮಂದಹಾಸಯಂ ಕನಕರುಚಿದುಕೂಲಂ ಚಾರುಬರ್ಹಾವಚೂಲಂ ಕನಕಿ ನಿಖಿಲಸಾರಂ ನವವಿಗೋಪೀಕುಮಾರಂ ವಂಶೀದ್ಭೂಷಿತಕರಾನ್ನವನೀರದಾಭಾತ್ ಪೀತಾಂಬರಾವರುಣಬಿಂಬಫಲಾಧರೋಷ್ಠಾತ್ ಪೂರ್ಣೇಂದುಸುಂದರಮುಖಾದರವಿಂದನೇತ್ರಾತ್ ಕೃಷ್ಣಾತ್ ಪರಂ ಕಿಮಪಿ ತತ್ವಮಹಂ ನ ಜಾನೇ. एक प्रेमी का बड़ा सुंदर अनुभव है. वो भगवान से कहते हैं, गोपालांगन कर्दमेषु विहरन, गोपालांगन कर्दमेषु विहरन, विप्रध्वरे लज्जसे ब्रूषे गोकुल हुंकृतै सुतशतै मौनं विधत्से सतां दास्यं गोकुल पुश्चलीषु कुरुषे ಸ್ವಾಮ್ಯಂ ನದಾಂತಾತ್ಮಸು ಜ್ಞಾತಂ ಕೃಷ್ಣ ತವಾಹಿ ಪಂಕಜಯುಗಂ ಪ್ರೇಮೈಕಲಭ್ಯಂ ಮುಹು. ಇಸ್ಕಾ ಅರ್ಥ ಹೇ, ಭಗವಾನ್ ಸೇ ಕಹತೆ ಹೇ, ಗೋಪಾಲಾಂಗನ ಕರ್ದಮೇಷು ಬಿಹರನ್, ಗ್ವಾಲೋ ಕೇ ಘರೋ ಕೇ ಕೀಚಡ ಭರೆ ಆಂಗನ್ ಮೇ ತೋ ಆಪ್ ಬಿಹಾರ್ ಕರ್ತೆ ಹೇ, लोटते हैं बड़े चाव से. गोपालांगन कर्दमेषु विहरन, कीचड़ों में, इस कीचड़ में लोटे, उस कीचड़ में लोटे, उसमें लोटे, ग्वालों के आंगन के कीचड़ों में तो आप लोटते हैं. और विप्रध्वरे लज्जसे, ऋषि मुनि ब्राह्मण वैदिक मंत्रों के द्वारा आपका आह्वान करते हैं, वहां जाने में आप शर्माते हैं, वहां नहीं जाना चाहते, नहीं प्रकट होते. ब्रूषे गोकुल हंकते ही, कहीं किसी बछड़े ने हंकार कर दी, जरा सा बोल दिया, कोई गोप सखा जरा सा नन्हा सा बच्चा अरे कन्हैया पुकार उठा, तो आप दौड़े चले जाते हैं, बोलते हैं. और मौनम विधत् से सताम, वहां तो बातचीत करते खूब. और शुत सताम मौनम विधत् सताम, सत्पुरुष लोग सैकड़ों सैकड़ों आपकी स्तुतियां करते हैं, तो आप नाम धार लेते हैं, बोलते नहीं, उत्तर देते. और दास्यम गोकुल पुरुष चलीष पुरुषे स्वामियम न दानतात्मसु, गोकुल की अहिरणियों की आप दुलामी करते हैं, दास्यम गुलाम, और स्वामियम न दानतात्मसु, इंद्रियों का मन का दमन कर चुके हैं. ऐसे महात्मा लोग कहते हैं कि आप हमारे स्वामी बन जाओ, हमें सेवक बना लो नाथ, तो कहते हैं हम नहीं बनाएंगे. तो जातम कृष्ण तदान भी पंकज युगम प्रेमी कलभ्य भूर, हे श्री कृष्ण हम जान गए आपके चरण कमल युगनों की प्राप्ति एक प्रेम से ही होती है और कोई साधना नहीं. बड़ा सुंदर भाव। नारद से सुख जा से रखे प्रतिहार कई तुम पार न पावे, क्या यही रख छोहरिया सखिया अगर छाछ पे नाच न चावे। तो ये जादू चमत्कार ये प्रेम में है, जो भगवान किसी प्रकार से भी वश में नहीं हो सकते। उनका नाम है स्वश, अपने आप अपनी वश में है, वो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, उन पर किसी का शासन नहीं, किसी का कोई अधिकार नहीं। वे भगवान स्वयं अपने आप को बंधा लेते हैं प्रेम रज्जु में, ये एक प्रेम की महिमा है। तो इसलिए ये संत पुरुषों ने महात्माओं ने चार पुरुषार्थों के अतिरिक्त एक पंचम पुरुषार्थ की बात कही। वो पंचम पुरुषार्थ है भगवत प्रेम। चार पुरुषार्थ प्रसिद्ध हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। अर्थ भी पुरुषार्थ ही है और काम भी पुरुषार्थ है। यदि वे धर्म के द्वारा नियंत्रित हों और मोक्ष उनका उद्देश्य हो, धर्म से अनियंत्रित काम और अर्थ ये तो असुरों का पुरुषार्थ है। धर्म युक्त अर्थ हो काम हो और इसका उद्देश्य हो मोक्ष, तो वे अर्थ और काम भी पुरुषार्थ हो जाते हैं। परंतु एक पांचवा पुरुषार्थ, वो बहुत बड़ा श्रेष्ठतम पुरुषार्थ है, जहां मोक्ष का भी परित्याग हो जाता है, बल्कि उस पुरुषार्थ की उस वस्तु की उपलब्धि नहीं होती मोक्ष की आकांक्षा रहने तक। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत प्रेम सुख स्यात् कथम भवेत्। कहते हैं कि जब तक भोग की और मोक्ष की दोनों को साथ ही मिला दिया इन लोगों ने, जैसा भोग वैसा ही मोक्ष उनके लिए, बड़ा तारतम्य विषयी लोगों की बड़ी अभिलषित परंतु मुमुक्षुओं के लिए गंदी चीज भोग भुक्ति, और मुमुक्षुओं के लिए जिज्ञासुओं के लिए आत्म प्राप्त करने वाले महापुरुषों के लिए परम पुरुषार्थ मुक्ति। पर ये शिवजी के वचन है, भला शिवजी के वचन है, भुक्ति मुक्ति स्प्रिया यावत पिशाची हृदय वर्तते। हृदय में जब तक भुक्ति और मुक्ति की मोक्ष और भोग की पिशाचिनी इच्छा, पिशाचिनी जो सारे रस रक्त को पी जाती है, ये इच्छा ये जब तक हृदय में वर्तमान है तब तक प्रेमांकुर का उदय नहीं होता। तो ये पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम, ये भगवत प्रेम में मोक्ष का भी परित्याग हो जाता है। अर्जुन ने तो शरणागति में उसका परित्याग कर दिया, अर्जुन को गीता का फल क्या मिला। यदि कोई महाभारत को देखे तो फल सुस्पष्ट है, अर्जुन को मिली भगवान की शरण प्रपत्ति और उसका फल हुआ भगवान का सेवा लाभ, सेवाधिकार प्राप्ति। ये महाभारत से ही प्रमाणित है। महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व में अर्जुन की गति के संबंध में वर्णन आया है। वहाँ देखा गया है कि भगवान के दिव्य धाम में साकार विग्रह दिव्य मंगल विग्रह भगवान का विराजित है, और वहाँ आयुध और आभूषण मूर्तिमान परिकर रूप में है, और उन्हीं के साथ अर्जुन भी है और भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो गीता का 18वां अध्याय है मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष का संन्यास हो जाता है शरणागति में, मुक्ति का संन्यास। तो भुक्ति मुक्ति स्प्रिया यावत पिशाची हृदय वर्तते, ये पिशाचिनी इच्छा है, तो भगवत प्रेम इस प्रकार का एक सर्वोत्तम पुरुषार्थ है कि बस वही जीवन का लक्ष्य बने और उसका साधन भी बने वही साधन साध्य राम पद नेहु। भगवत चरणारविंद का स्नेह यही साधन और यही साध्य। तो जीवन में इस प्रेम का विकास करें। प्रेम के विकास के लिए एक दो वस्तुओं की आवश्यकता है। लोग कहते हैं, पूछते हैं, प्रेम कैसे हो? प्रेम में दो वस्तुओं की आवश्यकता है। प्रेम होने में एक वस्तु है अपने प्रेमास्पद के अतिरिक्त अन्य समस्त प्राणी पदार्थ परिस्थिति से विराग। ये सबसे पहली चीज है। प्रेम का अर्थ है अनन्य आसक्ति, अपने भगवान में, अपने प्रेमास्पद प्रभु में अनन्य आसक्ति, अनन्य ममता। दूसरी किसी वस्तु में, प्राणी में, परिस्थिति में न ममता और न आसक्ति, अनन्य आसक्ति, पूर्णानुराग। अपने प्रेमास्पद प्रभु के अतिरिक्त अन्य समस्त वस्तुओं से सहज वैराग्य, ये एक आवश्यक वस्तु है। ये संसार का वियोग भगवान के साथ हृदय का योग करवा देता है। जब तक संसार का वियोग हृदय में नहीं, संयोग है, तब तक नित्य संयुक्त भगवान भी वियुक्त बने हुए हैं, स्वाभाविक। तो भगवान का संयोग हमारे हृदय में जागृत हो, यही वास्तविक योग है। भगवान के साथ चित्त का, जीवन का, आत्मा का, एकात्मता को प्राप्त हो जाना, जुड़ जाना, यही वास्तविक योग है, यही प्रेम है। तो एक बात तो ये, भगवान के अतिरिक्त अन्य प्राणी पदार्थ परिस्थिति में सर्वथा विराग। दूसरी चीज बहुत बहुत काम की चीज है, स्वसुख की कल्पना का सर्वथा परित्याग। विराग में विराग न रहे, सारे प्राणी पदार्थों में वैराग्य हो जाए पर विराग में भी आ सकते न हो। बड़ी ऊंची बात आई है भागवत के महात्म्य में। गोकर्ण जी ने कहा, वैराग्य के राग प्रेम रसिक हो जाओ, वैराग्य राग रसिक हो भक्ति निष्ठ। विराग राग में भी एक राग होता है, मैंने समस्त वस्तुओं के परित्याग में एक विशेष प्रकार के रस की उद्भावना होती है। इस रस का हम लोगों को इसलिए पता नहीं है कि हम लोगों ने कभी विराग के मीठे रस को चखा ही नहीं। हम लोग गंदे विषयानुराग में रहे, इसलिए विषयों के माधुरी को ही मधुरता मानते रहे। तो हमें तो वैराग्य के रस का अनुभव ही नहीं, परंतु वो संत कहते हैं गोकर्ण जी के वैराग्य में भी एक राग है। तो उस राग के रसिक बन जाओ, वैराग्य राग के रसिक बन जाओ, पर भगवान की भक्ति में, शुद्धा भक्ति में निष्ठावान बनो। पर वो वैराग्य का रस भी भगवत प्रेम रस के सामने नीरस हो जाए। वैराग्य का रस भी भगवत प्रेम रस के सामने नीरस हो जाए, ये आवश्यकता है और ये स्वाभाविक होता है। तो प्रेम की प्राप्ति के लिए दो चीज आवश्यक हुई, दो चीज आवश्यक हुई। एक, भगवान के अतिरिक्त, भगवान भी कौन से, प्रेमास्पद भगवान, और कोई से भगवान नहीं। नारद जी के भक्ति सूत्र में बड़ा सुंदर सूत्र है, सारे साधन बताए, विरोधी साधन बताए त्याग के लिए, अनुकूल साधन बताए ग्रहण के लिए, अंत में फल बताया उनका, सप्रेष्ठम लभते। ये नहीं कहा भगवत प्राप्ति होगी, ये नहीं कहा ज्ञान प्राप्ति होगी, और ये नहीं कहा मोक्ष प्राप्ति होगी, सप्रेष्ठम लभते। इस प्रकार साधन करने वाला महात्मा प्रियतम को प्राप्त करेगा, प्रियतम। और यही तो सबसे बढ़िया चीज है कि भगवान के सिवा कोई प्यारा रही नहीं जाए। सारा प्यार सब जगह से सदा के लिए सिमट कर एकमात्र भगवत चरणारविंद में स्थित हो जाए। या जग में जह लगी या तनु की प्रीति प्रतीत सगाई, सो सब तुलसीदास प्रभु ही सो हो सिमट एक ठाई। इस जगत में जहाँ तक शरीर के संबंध को लेकर प्रीति प्रतीति सगाई, तीन चीज प्रेम विश्वास और अपनापन आत्मीयता, जहाँ जहाँ पर जो जो जितनी जितनी थोड़ी बहुत अधिक कम है सो सब वो सब सब जगह से हटकर प्रभु यीशु हो सिमटी एक छाई, सब जगह से बटुर कर सिमट कर एक प्रभु के चरणारविंद में आकर स्थिर हो जाए, लग जाए प्रभु चरण में ही प्रीति, प्रभु चरणों में ही विश्वास और आस विश्वास भरोसो भरो जीव की जड़ता ही। प्रभु को छोड़कर दूसरे की आशा दूसरे का भरोसा दूसरे का विश्वास ये तो जड़ता है, यही तो अज्ञान है। तो जितना कुछ संबंध जहां तक जो कुछ भी एकमात्र प्रभु से रह जाए, जगत के सारे प्राणी पदार्थ परिस्थिति से विराग हो जाए एक बात, स्वसुख की चाह का सर्वथा आभाव हो जाए दूसरी बात, तत्सुख सुखित्वम ये प्रेम का स्वरूप बताया, तत्सुख सुखित्वम उसके उस प्रियतम के सुख में सुख है, उसके सुख से सुखी होना है, तब सुखी भाव। वो भगवान वो हमारे प्रियतम श्रेष्ठ प्यारे और उनका सुख ही हमारा सुख। अब उसमें कोई बात भी सोचने विचारने की नहीं है कि ये सुख कैसा और ये सुख कैसा, उनको जो अभिलषित वो जो चाहे वही सुख, उनकी जैसी मर्जी हो वही हमारा स्वभाव, वो जिस प्रकार का चाहे उसी प्रकार का हमारा जीवन, अपने जीवन की बात सोचने वाले हम नहीं, अपने अपना स्वभाव बनाने वाले हम नहीं, उनका स्वभाव हमारे स्वभाव में उतर जाता है यदि हम केवल उनमें अनुराग करते हैं। तो स्वसुख की चाह ये महाराज बड़ी बाधा होती है संसार के प्रेम में भी, घर में भी अगर दो भाई हैं, घर में भी अगर स्त्रियां देवरानी जिठानियां आदि हैं, तो वहां पर भी यही प्रयोग करके देखिए, घर में आनंद हो जाएगा। दूसरों के लिए त्याग करिए, अपने लिए चाहिए मत, बस ये ऐसी कुंजी है शांति और प्रेम का भंडार खोल देने की, कुछ करना नहीं पड़ता, केवल भाव रखिए। अपने सुख को अगर त्याग सके तो सर्वोत्तम, नहीं तो अपने को गौण रखिए और उसको मुख्य रखिए। दो फल भी घर में आए तो भाई के लड़के को अच्छा वाला दे दिया, जरा बड़ा वाला दे दिया, और अपने लड़के को छोटा वाला रख लिया, काम हो गया। मामूली त्याग है पर इसका बड़ा प्रभाव, जितना जितना त्याग उतना उतना प्रेम, और जितना जितना प्रेम उतना उतना आनंद, ये सिद्धांत है। जहां त्याग है वहां प्रेम होगा, चाहे वो परिवार प्रेम हो, भाई का प्रेम हो, देश का प्रेम हो, जाति का प्रेम हो, धर्म का प्रेम हो, विश्व प्रेम हो, भगवत प्रेम हो, जितना जितना जिस जिस प्रेम में त्याग होगा उतना उतना प्रेम विशुद्ध होगा। ये जो विशुद्धानुराग है उसका स्वरूप यही है, विशुद्धानुराग का अपनी विस्मृति, अपने सुख की विस्मृति और प्रेमास्पद के सुख को ही जीवन बना लेना। किसी को भी अपने वश में करना हो सीधा काम, उसके लिए त्याग करो, उसके लिए अपनी चीज को दे डालो, अपनी प्यारी चीज को उसकी प्यारी चीज बना दो। उपदेश की आवश्यकता नहीं होगी, नहीं तुम हजार कहने अच्छा भाई प्रेम करना चाहिए घर में, जो आप लोग प्रेम नहीं करते, आप लोग नहीं करते पर तुम करते हो ना, ये दूसरे के उपदेश की चीज नहीं। त्याग बोले तुम त्याग करो ये कहने की बात नहीं, हम त्याग करें, स्वयं त्याग करेंगे तो उसका फल प्रेम होगा। और जहां प्रेम हुआ आनंद, रामचरित मानस का, रामायण का, ये अयोध्या कांड, जहां से कह कही ने भरत के राज्य के लिए वरदान मांगा, पादुका लेकर भरत के लौटने तक का इतिहास, ये जगत में सदा के लिए एक आदर्श बना रहेगा, नित्य आदर्श बना रहेगा। दोनों ही अधिकार को ठुकराते हैं, दोनों का अधिकार रहता है और आनंद का तो कुछ ठिकाना नहीं। इतना आनंद बढ़ता है, भरत राम का जाप करते हैं, राम भरत का जाप करते हैं, दोनों दोनों का नाम सुनकर प्रफुल्लित हो जाते हैं, दोनों दोनों के हाथ मानो अपने आप को बेच देते हैं। क्या चीज है, केवल त्याग। उस त्याग का फल परम प्रेम और प्रेम का फल परमानंद, स्वाभाविक। अगर त्याग न होता तो राम भरत का जो इतिहास आज उपलब्ध है ये नहीं मिलता। अगर कहीं भरत ने माँ की बात मान ली होती, अरे माँ के लिए तो हर एक माँ की होती है, वही तो थी उस बिचारी की, और बुरी चीज क्या थी अपने बेटे को आज मिल जाए और उसका कंटक दूर हो जाए, ये तो समझा, ये तो समझा ना। पर उसने बात नहीं, भरत ने कह कही को फिर माँ नहीं कहा, ऐसा आता है गीतावली में। एक बार जब ये लौट आए वहां से, लंका विजय हो गई, राम राज्य हो गया, सब प्रकार से सब सुखी हो गए, कैकेयी के मन में एक बड़ा दुख था। राम बड़ी सेवा करते कैकेयी देवी की। एक दिन कैकेयी ने कहा राम से कि बेटा मेरे मन में एक चीज है, उसको अगर तुम करवा दो तो मेरे जीवन का एक बड़ा कांटा निकल जाए। कहा मां बोलो। बोले काम भरत से करवाना है। तो कहा भाई मेरे हाथ की बात तो नहीं, आप कहो सो मैं कहूंगा। क्या बात? तो बोले एक बार भरत मुझे माँ कह दे एक बार भरत कह दे माँ, कह के भी को माँ कह दे। राम ने कहा अच्छी बात है, कहूंगा भरत। अकेले में भरत को बुलाया राम ने, बोले भैया एक मेरा अनुरोध है, एक काम तुझे करना पड़ेगा। कहा महाराज तो इसमें पूछना क्या है? भरत जान गए कि और कोई बात तो राम के अमान्य मेरे मन में एक अमान्य है, तो कह दिया कि महाराज कैकेयी को माँ कहने का ट्रिक, और जो कुछ आपकी आज्ञा हो तो सब करने को तैयार, पर कैकेयी को माँ कहना स्वीकार नहीं करती भरत की जीव। क्या किया जाए? अब वहां प्रेम कैसे न रहे बताइए। उस माँ का मुंह नहीं देखना चाहा और ये कहा कि मेरे समान कलंकी, मेरे समान कुल घातक, मेरे समान नीच पापी कौन होगा? जिसके उदर से मैं पैदा हुआ वो राम का वनवास चाहती, ये सारा निमित्त तो मैं हूं ना। तो अब बताइए वहां वहां पर क्लेश, द्रोह, द्वेष, बैर कहां से आ गए? ये सब बह गए और उन्हीं के नहीं बह गए, उनका नाम आज जो लेते हैं, उनके चरित्र को जो आज देखते हैं, उनके बैर बह जाते हैं। बड़ी लज्जा हुई जब भरत जब ये लंका विजय करने के पश्चात विभीषण और सुग्रीव जब लौट करके आए और जब राम और भरत के चरित्र को देखा मिलते हुए, तो ये दोनों अलग जाकर रोने लगे, सुग्रीव और विभीषण, कि हम भी भाई हैं और ये भी भाई हैं। माना हम राम के सेवक हैं, माना हम सत्पथ के गामी हैं, पर भाई के भाई तो हम नहीं हैं। तो जितना भी प्रेम है उसकी मूल भित्ति त्याग है, और जहां प्रेम है वही आनंद है। स्वाभाविक भाई आप घर में करके देख लिए, दो आदमी बैठे हैं रेल में और भीड़ हो रही है, तीसरा आया वो बेचारा भीड़ जा कैसे कहे कि आप उठ जाओ हम बैठेंगे, सोए तो आप हैं नहीं सिकुड़े बैठे हैं, उसी में से आप कह गए कि भैया तुम ही बैठ रहे और यहाँ हो जाकर तुम बैठ जाओ, आप चाइट हो जाएगा और कहीं आप उठकर खड़े हो गए तब तो चरणों में फिरने लगा नहीं है मेरी, आप बढ़िया ही बैठेंगे, स्थान मांगने वाला कहीं नहीं, आप छुट हो ही रहे आप भी तो बैठेंगे, जगह नहीं है तो क्या करें। अपने आप त्याग की भावना उदय होते ही अनुकूलता आ जाएगी, और जहां भावना खींचातानी की है लेने की है देने की नहीं, वहां संघर्ष होगा, वहां संघर्ष होगा। तो प्रेम क्या करता है, प्रेम देना जानता है लेना जानता नहीं, ये प्रेम का स्वरूप है, प्रेम देना जानता है, प्रेम देता रहता है, प्रेम मांगना तो जानता ही नहीं, ग्रहण करना भी नहीं जानता, लेना भी नहीं जानता। कहाँ लेता है प्रेम, जहाँ प्रेमास्पद को सुख होता है वहां प्रेमास्पद के लिए प्रेम ग्रहण भी कर लेता है, परंतु करता है प्रेमास्पद के सुख के लिए, वहां भी उसके कोई नीति मर्यादा की आवश्यकता नहीं, ग्रहण करने में भी इसमें भी यद्यपि हम लोगों के लिए बड़ी आवश्यक चीज है, पर जहां विशुद्ध अनुराग का राज्य है वहां अगर प्रेमास्पद चाहता है कि प्रेमी के पैर पूजूं इससे मुझको सुख होगा, तो प्रेमी कहते हैं पूज लो, जय बार चाहे तय बार पूज लो, क्या आपत्ति है, पैर पुजवाने की तो कोई बात है नहीं, पर साथ ही वो कहे पैर काटूंगा तो पैर बढ़ा के बल जरूर काटो हो। तो जहां श्रद्धा होती है वहां भी ऐसा हो जाता है, अपने पूज्य के प्रति श्रद्धास्पद के प्रति जहां भक्ति होती वहां भी होता है, पर जहां प्रेम है वहां तो सहज होता है। श्रद्धा भक्ति में एक लव्य ने अपना अंगूठा दे दिया, मामूली बात है, गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर उसने पूजा की, मूर्ति से उपदेश प्राप्त किया मनोवैज्ञानिक रूप से, और जब गुरु ने कहा कि दक्षिणा दोगे, गुरु हमारा दक्षिणा क्यों नहीं दे आप गुरु जो आज्ञा, तो बोले गहने हाथ का अंगूठा पाता, ये बाण खींचने के लिए मिठाई न रहे खींचेगा कैसे, मार दिया ना गुरु ने उसके जीवन को, हंसते हुए एक लग्न ने काट के अंगूठा दे दिया जाओ ले। श्रद्धा में और प्रेम में तो जीवन काटने की बात आ जाए तो अपने हाथों काट करके रख दे, बोले प्रेमास्पद तुम हंसते हो तो हम काटते हैं, तुम हंसते रहो और हमारी ये शरीर की स्थिति खंड खंड हो जाए, कोई आपत्ति नहीं, बड़ा सुंदर। हमारे शरीर के कट जाने पर, खंड खंड हो जाने पर अगर तुम हंस सको, तुम्हारे अधरों पर अगर मुस्कान आ सके तो बड़ा अच्छा है। इसीलिए तो वो प्रेमी जो है वो वियोग में बहुत प्रसन्न रहता है, वो कहता है कि ये वियोग की जो अग्नि है ये अग्नि यद्यपि मुझे जलाती है पर ये मेरे प्रेमास्पद के हृदय को शीतल करती है ना, तो मेरा और धधक है, ये प्रेम की आग कभी बुझे नहीं, धधकती रहे। वो मिलना नहीं चाहता, वो प्रेमास्पद का सुख चाहता है, मिलन में बड़ा सुख है उसको, मिलन का योग नहीं है, पर मिलन यदि प्रेमास्पद के लिए असुख कारक है तो उसके लिए त्याग है। वो उसको ये नहीं कहता कि वो नहीं चाहती इसलिए छोड़ देता हूं ना, वो तो त्याग वस्तु है, अपना सुख यदि प्रेमास्पद का सुख नहीं है तो वो त्याग है। बल्कि यहां तक की चीज है, जलेबी खा रहा है اور جلیبی میں کھانے میں آیا جیب کو مدر سواد, اس سواد سے کی پریما اس سب کو پسندتا نہیں ہے, اس کو سواد نہیں آئے گا, تو اس سواد کا پرتیاگ کر دے. پریما سب کی رسنا اگر اس رس کا انوبھو کرتی ہے تو اسے سویکار نہیں, تو اسے سویکار نہیں. یہ آگے جا کر ہوتی ہے ایسی چیز کہ جب پریم کی ابھیجتی ہو جاتی ہے تمام تن تن میں, تمام اندروں میں, روم روم میں, تب یہ سب کے سب اس کے ویسے انکور ہو جاتے ہیں جیسے ہماری جیب کڑوی ہو رہی ہے اور ہماری کڑوی جیب پر ہمیں مشری نہیں میٹھی لگتی ہے, اور ہماری جیب کہیں آپ کی جیب پر آ بیٹھے, تو یدی ہماری جیب آپ کی جیب پر آ بیٹھے گی تو آپ کو مشری کڑوی لگے گی, کیونکہ ہماری جیب آپ کی جیب ہو گئی. اسی پرکار سے یہ شری اروند کے سدھانت میں ایک ہے کہ ڈیوائن کا اوترن ہو جاتا ہے, ہو جائے گا کبھی فزیکل باڈی میں, اس بھوتک شریر میں ہوا نہیں ہے, ہو جاتے ہیں بھگوان جانے, پر پریم کی جہاں پراکاشٹھا ہوتی ہے وہاں ویکتی میں پریماس پد کے شریر کا اوترن ہو جاتا ہے. سماج کی باتیں ہیں, اس ویکتی میں پریماس پد کے شریر کا, نل کا, وتوں کا اوترن ہو جاتا ہے, ان کا روپانتر ہو جاتا ہے. یہ پریم جو ہے یہ بہت وشیش بات ہے, پریم جو ہے یہ من کو روپانترت نہیں کرتا, سارے شریر کو روپانترت کر دیتا ہے, اور ایسا انبھو ہوتا ہے کہ میں وہ ہو گیا. کیول بھاونا سے نہیں, یہ پریم ویشت میں اور آگے بڑھ کر کے ایسا آتا ہے لیکن ریوان میں کہ کبھی کبھی شری کرشن ہو جاتے تھے رادھا اور رادھا شری کرشن, یہ کیول بھاؤ سے نہیں تمام بدل جاتا تھا, جو کا جو سارے انگ اوگ بھاو اندریاں من بدھی روم روم سب کے سب. تو یہ جو یوگی کا نرمان کار ہوتا ہے مہاراج, وہ یوگ اپنے یوگی اپنے یوگ سدھی کے دوارا کار نرمان کر لیتا ہے, اور اسی پرکار کے سبھاؤ کو بدھی کو لے آتا ہے. بھگوان کا جو ایشور یوگ ہے, ایشور یوگ, اس یوگ نے کیا کیا, سارے بچڑے اور سارے گوپ بالک اس ایشور یوگ کے دوارا جن کے کیوں بن گئے, اور کیول بچڑے اور بالک ہی نہیں, ان کے جتنے سامان تھے, جس کی ناک جیسی, جس کی آنکھ جیسی, جس کے بال جیسے, جس کے بالوں کا ڈھنگ جیسا, جس کی لکڑی, لاٹھی, لکوٹی, بانس, یہ بنسری, سنگا, جوتی, چھینکا, سب کے سب جو کہتوں روپانترت ہو گئے, نوین نرمان ہو گیا. اسی پرکار سے بھگوت پریم میں بھگوان کا نرمان نہیں ہوتا, بھگوان کا اوترن ہوتا ہے اس شریر میں جو پریمی کا شریر ہے, اور اوترن ہو کر وہ جو کا کیوں جیسے کا تیسا بن جاتا ہے. تو پہلے اس کی بھاونا کرنی پڑتی ہے کہ پریما پد کا سکھ میرا سکھ ہے, یہ پہلے کلپنا کرنی پڑتی ہے, نشچے کرنا پڑتا ہے. تو ایک چیز تو بہت جلدی ہو جاتی ہے, سوسخ کی چاہ مٹ جاتی ہے, تو سوسخ کا بھان نہیں ہوتا, پریماسپد کا سکھ نہ ہو سکتا, اور نرنتر اس کی درشٹی رہتی ہے کہ یہ میرا کرم میرے لیے تو نہیں, میرے لیے تو نہیں, پریماسپد کے لیے ہے کہ نہیں, یہ وہ نرنتر دیکھتا رہتا ہے. اس لیے پریماسپد کی رچی کا انسرن اس کے دوارا سوابھاوک ہو. پریماسپد جس چیز کو پسند کرتے ہیں, جب جو چاہتے ہیں, اسی پرکار کی کریا چیشٹا اس پریمی کے دوارا سوابھاوک ہونے لگتی ہے, یہ پریم کا سوبھاو ہے. تو اس پریم میں تو دو ہی چیز ہے خاص طور پر, سوسکھ کی وانچھا کا پرتیاگ. یہ یہاں پر بھی آپ کے دوارا یدی ہم اپنا سکھ چاہیں اور ہم آپ اپنے کو آپ کا پریمی مانو تو وہ پریم نہیں ہے, کام ہے. یہ کامی کا ارتھ کوئی یہ انگوں میں ہی کوئی سوروپ آتا سو بات نہیں ہے, سوسکھ کی اچھا ہی کام ہے, اور پریماسپد کے سکھ کی اچھا ہی کام کا پرتیاگ ہے اور پریم. یدی آپ ایشور سے بھی اپنے سکھ کی وانچھا کرتے ہیں, چاہے وہ سکھ مکھ سکھ ہی ہے تو اپنا سکھ نہ, تو وہ بھی اونچا کام ہے پر کام ہے. اور جہاں छोटे से छोटा काम, अगर रसोई बनाना है, झाड़ू देना है, तो वो भी प्रेमास्पद के सुख के लिए है, तो उसका नाम प्रेम। प्रेम किसी क्रिया में बंधा नहीं, प्रेम किसी स्थान में बंधा नहीं, प्रेम किसी श्लोक में, छंद में, भाषा में बंधा नहीं, प्रेम किसी व्यक्ति में, वेश में बंधा नहीं। प्रेम निर्मुक्त है और प्रेम निर्गुण है, गुण रहित है। वो प्रेम प्रेम स्वरूप है, वो प्रेम भगवत स्वरूप है। भगवान के अतिरिक्त उस प्रेम में किसी और की सत्ता नहीं। इसलिए प्रेम के समान पवित्र वस्तु संसार में कोई है नहीं, और इस प्रेम के पवित्र रस का आस्वादन करने के लिए नित्य तृप्त, नित्य निष्काम आत्मकाम प्रभु सकाम बन जाते हैं। इस प्रकार का जहाँ प्रेम रस है विशुद्ध, उसका आस्वादन भगवान को बड़ा प्रिय। वीक्षरण तो मनश्चक्रे, यही बात है। भगवान में किसी आकांक्षा का लेशा भास भी नहीं है, पर भगवान की आकांक्षा इतनी बलवती होती है, इतनी वेगवती होती है, इतनी तीव्र होती है कि प्रेम रस का जहाँ कहीं उन्हें पता लग जाता है, वहाँ वे किसी दूसरी चीज को न देखकर, न जानकर स्वयं पहुँच जाते हैं। वो चांदारी घर पहुँच जाए तो उनको आपत्ति नहीं है। तो चांदाल की मर्यादा हम लोगों में है ना, चांदाल का बेटा कौन है, तो चांदाल की आत्मा कौन है बताइए ना, वही तो है। दूसरा थोड़ी बना हुआ चांदाल का, आत्मा को शैतान बन के आ गया हो, ये तो है नहीं। तो उनको कहीं पर ये जितने भी मर्यादा के नियम है, ये सब आवश्यक है, इनको तोड़ना नहीं चाहिए। पर उस तीव्र निष्काम त्याग के प्रवाह में जहाँ प्रेम की सदाधारा बहती है, ये दोनों किनारे मिटकर केवल रस ही रस रह जाता है। प्रेम का समुद्र लहराने लगता है, किनारा दिखता ही नहीं। तो किनारा न दिखे तो किस किनारे पर आकर ठहरे, कौन से मर्यादा पर आकर रहे, किनारा है ये नहीं, किनारा है नहीं। वो तो अटक सागर है, उसमें तट नहीं, पर उस सागर में डूबा हुआ कभी निकलता नहीं। पर उस सागर के अंदर ही वो महान रम्य, महान सुंदर, महान सुखमय, भगवान का चिन्मय मिलन होता है। प्रेम सागर में जो डूब गया, उसको उस प्रेम सागर के अंदर महान सुरम्य, महान रमणीय, महान पवित्र, दिव्य सच्चिदानंदमय, प्रेममय, प्रेमास्पद भगवान का मिलन होता है। उससे वो कभी निकलता नहीं, प्रेमी बाहर नहीं निकलता। परंतु बड़ा सुंदर ये प्रेम का चमत्कार कि उस प्रेम सागर के अंतस्तर में, उस मधुरतम प्रेम राज्य के प्रेम प्रासाद में, प्रेम के रंग महल में भगवान दूसरे बनकर उसके साथ रहते। ये अद्वैत में प्रेम द्वैत है। इस द्वैत का नाश न प्रेमी चाहता है, न प्रेमास्पद चाहता है। दो एक हैं, एक दो हैं, दो एक हैं, एक दो हैं, नित्य एक और नित्य दो, सत्व से एक और लीला में दो, बस ये प्रेम का एक स्वरूप है। यही प्रेम स्वरूप कह सकते, क्योंकि अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, जो प्रेम का स्वरूप है वो अनिर्वचनीय है। और ये प्रेम होता है भगवान नहीं भला, विषयों में विषय का जो प्रेम होता है वो कभी प्रेम है ही नहीं। वो उसमें तो कहीं न कहीं काम का कलंक है। प्रेम शब्द वाच्य तो वही प्रेम है जो केवल मात्र भगवान में होता है, और उस प्रेम में कहीं किसी प्रकार की आकांक्षा, वासना, कामना, ममता का कलंक नहीं होता। इसीलिए उसका नाम विशुद्ध अनुराग है, विशुद्ध अनुराग। वहाँ भगवत्ता की आवश्यकता नहीं होती। विशुद्धानुराग में भगवान का अभाव नहीं, ये तो अपने बात हो चुकी है। प्रेम होता ही भगवान में होता ही नहीं, पर वहाँ प्रेम के भगवान, प्रेम के ठाकुर भगवान भगवत्ता के लिए नहीं बैठे रहते, भगवत्ता की पोशाक उतार देते हैं। जैसे रात को कोई अपने शयन कक्ष में सो गए राजा, तो क्या पोशाक पहन के सोता है? राजा जब सोता है अपने शयनागार में, वहाँ पर क्या राज की पोशाक पहन के सोता है? अगर कोई सोना चाहता है तो किसी विपत्ति में पड़ा हुआ हो, मुसाफरी में हो, یا دربار میں بیٹھا ہو نیند آنے لگے تو بھل جائے سال ادھر جا، پر شہناگار میں جب سوئے گا تو اس درباری پوشاک کو اتار کے سوئے گا. اسی لیے اس پریم کے پراساد میں، پریم کے شہناگار میں، پریم کے رنگ محل میں، پریم پراساد میں بھگوتا کی پوشاک اتار کر بھگوان رہتے ہیں. نہیں ڈر جائے مہاراج کہیں کروکشیتر والے چابوک ہاتھ میں لے کر کے بھگوان شری کرشن کوچ پہنے ہوئے کہیں گوپیوں کے منڈل میں پرگٹ ہو جائیں تو مارے ڈر کے بےچارے سب بھاگ چھوٹیں. اور کہیں بچے میں مرلی ارلی کو میور پچھ کو الگ رکھ کر کے اور سدرشن دے کر کے آ جائیں آپ تو بچے سب کے سب بھاگ جائیں، بولے یہ چار ہاتھ والا یہ کیسا جنتو کوئی آ گیا مہر دکھ دیتا ہے. ان بچاروں کو تو اس کا دھیان ہے نا، اس کو دیکھا ہے. تو وہاں بھگوتا کی ایشوریہ کی پوشاک کبھی کبھی وہ پہنتے ہیں جب کوئی دیکھ کے آتا ہے تو ان کو نہیں دکھاتے، ان کو ایشوریہ کی پوشاک نہیں دکھاتے، ان کے سامنے تو وہی بنے رہتے ہیں. وہ نل کوگر منی جی پرگٹ ہوئے، پرگٹ ہو کر کے انہوں نے وہ نکلے گئے اس ارجن پیڑوں میں سے ستی اتھی تھی تو بچے سب دیکھ رہے. بولی کنہیا کہ کون فری دے رہا ہے؟ اور میا بابا سے بولے ارے بابا یہ کنہیا نے ہی پیڑ توڑ دیا. ان کے ایشوریہ کا بھاؤ بولے کہ اونکھل پھنس گئی بابا اس میں، اس نے دیا جھٹکا تو یہ پیڑ ٹوٹ گئے. نند بابا نے سوچا پگلے لوگ ہیں یہ کیا توڑ دیا. اب نند بابا کے من میں اتنا مہاتم سنا سنایا بھگوان کا پر کبھی آیا نہیں اس نے پیڑ توڑے ہوں گے نا، تو پیڑ توڑنے میں ایشوریہ پرگٹ ہوا. پر نند بابا کے من میں، بچوں کے من میں، گوپیوں کے من میں کبھی آیا یہ نہیں کہ اس نے کہیں پیڑ توڑا راکشسوں کو مارا. وہ نہیں، رام سب کو مار رہا تھا جب آ گئے ایودھیا میں، ماں کے پاس گئے، ماں نے گود میں سلا لیا، ہاتھ واتھ پھیرنے لگی میاں کو سلجا سہانے لگے. ارے لوگ بہت جھوٹ بولتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اتنی بات بناتے ہیں رام کہ کس کے لیے کیا کہا جائے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ رام کو رام نے مارا، چلا یہ کبھی ماننے کی بات ہے کہ یہ میرا کومل رام جس کا میں دیکھو نا کیسے مکھن سے کومل کومل، یہ اس راکشس کو مار دے گا، یہ جھوٹ ہی بات. رام نے کہا یہ ٹھیک سچی سچ کہتی ہو تم، یہ تو منی مہاراج کے آشیرواد سے وہ مر گیا، سچی بات ہوئے گی اور اپنے پاپ سے مر گیا اور میری سہایتا جو کوئی ان بندروں نے کی ان کے کارن سے مر گیا. اور نہیں وہ سچی بات. اب میا کے من میں کبھی آرو نہیں کہ رام بھی راون کو مار سکتا. بولے ہم سنتے تھے رام، کوسلیہ نے کہا کہ میں سنتی تھی بہت بھاری وہ راکشس ہے اور مہاراج بہت اس کی بل کا بخان کیا کرتے تھے. تو رام اٹھا لیا ہاتھ میں گویا دن پہاڑ، انگلی پر گوا لیا مہاراج. وہ کمٹ کی طرح سے نہیں کہ سورجن پیٹھ کو وستار کر کے کورم دیو نے کورما اوتار نے پرتھو دھان کے یہ نہیں اٹھا لیا. تو بچے آئے، دو تین دن ہو گئے، کنہیا انگلی دکھنے لگی ہوگی تیری بہت دیر ہو گئی تجھ کو کھڑے اور یوں اٹھا رکھا ہے، دکھنے لگی ہوگی انگلی. ہم نے انتظام تو کر رکھا، جب ہم نے لاٹھی لگا رکھی ہے تو تیرے پر بھار تو کم پڑتا ہوگا ضروری، سمجھ رکھ لگا رکھی ہم نے کم ٹھیکا لگا رکھا ہے، پر تو بھی دکھتی تو ہوگی. تو جا ایک کام کر، یہ اس کو ہم اٹھا لیں اور ہم دو جنے جا کے انگلی کے تیل میں لگا دیں، جہاں مسل میں ٹھیک کر دیں سہلا دیں اس کو. وہاں مدھرتم بھگوان جو ہیں یہ نہیں کہا جائے تم کیا اٹھا لو گے، میں بھگوان اٹھائے ہوں نا، رفی بند ہو جائے سارا بھگوتا پرگٹ کر دے. بولے بھیا یہ تو ٹھیک ہی تو ہے، تم نے لاٹھی لگا رکھی ہے، میں تو کھیل نام کر رکھی، تمہاری لاٹھی نہیں کھڑا ہے، یہ تو گر جاتا. کبھی کہ ہے سچی بھائی جھوٹ نہیں، ان کے سارے بچوں کا جو پریم ہے وہی پریم تو یہاں شام سندر کے روپ میں کھڑا ہے. پنجی بھوتم پریم گوپانگ نام، بھگوان کے بگڑے کی ویاخیا کی، وہاں کہاں کالی شری کرشن کیا چیز ہے، کاہے سے بنا ہے؟ تو کہا پوری بھوتم پریم گوپانگنا نام، گوپانگناؤں کا پریم اکٹھا ہو کیسا بن گیا، جیسے دیوی بنی نا مہیشاسر مردنی، تمام دیوتاؤں کی شکتی ایک جگہ اکٹھی ہو گئی مہیشاسر مردنی بن گئی. اسی پرکار پنجی بھوتم پریم گوپانگنا نام، گوپانگناؤں کا گوپ رمنیوں کا پریم اکٹھا ہو گیا ایک جگہ اور وہ شام سندر وگرہ بن گیا. گوپیوں کا پریم شام سندر بنا ہوا ہے، کچھ ہے نہیں اس میں. تو وہاں بھگوان کی ساری بھگوتا بھگوان چھپا لیتے ہیں، بھگوتا پرکٹ. تو پریم راج میں، پریم کے رنگ محل میں بھگوان بھگوان نہیں ہے، بھگوان تو ہیں भगवान भगवान इसका अर्थ यही है कि भगवान तो है पर भगवत्ता वहां पर प्रकट नहीं है, वहां तो वो प्रेमास्पद है, मित्रों के मित्र हैं, माता पिता के पुत्र हैं, गुरु के शिष्य हैं और प्रेयसी के प्राणवल्लभ हैं, प्राणवल्लभ हैं। इस प्रकार से अपनी सारी भगवत्ता को मिटाकर प्रेम राज्य में निरंतर भगवान की प्रेम क्रीड़ा चलती रहती है, यही नित्य रास है। तो बस इस प्रेम राज्य में प्रवेश करना ये सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, सबसे बड़ा साध्य जो है, जिसको ये मुनि लोग भी चाहते हैं। और मुनि लोग भी जब इस प्रेम वाले को जरा देखते हैं ना, इसकी इसके प्रेम के उन दिव्य गुणों के प्रेम के गुणों को और गुण तो उनको कहाँ खींच खींच सकें मुनियों को। तो भागवतकार ने कहा कि उसमें बड़ा जादू है भाई, उसके गुणों में बड़ा जादू, जिसने देखा वो खिंच गया। बोले सब खिंच गए पर हम आत्मा राम लोग नहीं खींचते। बोले तुमने देखा नहीं अभी तक, तो देख लो आत्मा राम तत्व का सारा चूर हो जाएगा। इन ही दिनों कतियती अनुरागा बर बस बहुम सुख ही बन जाएगा, सहज विराज रूप मन मोरा थकित हो तो दिल चंद चकोरा। बह गया सारा का सारा ब्रह्म ज्ञान उस सौंदर्य के प्रवाह में जनक का, जनक का तो उस तरफ जहाँ देखा आत्मा अंदर ग्रंथार पिरुक्र में कुरवंत है सुखी भक्ति मिथम भूतम हरि। उस हरि में इस प्रकार के वो दिव्य चमत्कारी गुण हैं कि आत्मा राम निर्ग्रंथ मुनियों के चित्त का हरण करके उनके अंदर भी अहेतु की प्रेमा भक्ति प्रकट कर देता है, ये जादू। तो ये प्रेम ये सर्वश्रेष्ठ ध्येय है, साध्य है, और इस प्रेम की प्राप्ति सभी का लक्ष्य होना चाहिए। प्रेम स्वरूप भगवान मिल जाए तो बस और क्या करना है, हरिओम करते हैं।